सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
जीत गए कोरोना से, कोरोना की जंग से जीते हुए लोगों से एक सकारात्मक बातचीत। प्रस्तुति सुमेधा अग्रश्री।
नमस्ते मित्रों, हम आपके सामने हैं अपनी सीरीज जीत गए कोरोना से लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो कोरोना से जूझ कर ठीक होकर आए हैं और अब बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से उनके लिए मददगार हैं। आज हमारे साथ जो मित्र हैं मंजीत जी, उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पर हम मंजीत जी से थोड़ा सा उनका परिचय लेते हैं। मंजीत जी, आपका स्वागत है और अपने काम के विषय में, सक्रियता के विषय में थोड़ा सा बताइएगा।
आप सभी को नमस्कार। मैं एक समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ काम कर रही थी पिछले विगत 3-3.5 सालों से, और पिछले साल जब कोरोना का समय आया तो एक श्रमिकों के को लेकर, सबको पता है कि अचानक से पलायन वापसी होने लगी और सब परिवहन के लिए, भोजन के लिए बहुत सारी दिक्कतों के सामना कर रहे थे। तो हम सारी टीम वाले मिलकर, रवि द पीपल है, ये सब सारे लोग जिला प्रशासन के साथ सहयोग के लोग उतरे और न केवल रायपुर, छत्तीसगढ़ और धीरे धीरे नेशनल लेवल पे जहाँ जहाँ से भी समस्याएं आई हमने करना शुरू किया। एक दौर हुआ, धीरे धीरे चीजें कम हुई तो हम गाँव तक पहुंचे और गाँव में लोगों की मदद करना शुरू किए। इसी बीच ये दूसरा वेव आया मार्च के एंड में, और उसके बाद अचानक से समस्याएं, अप्रैल फर्स्ट वीक सबके लिए बहुत दर्दनाक था जिसमें ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं मिल रहा है। तो हमने फिर वो पूरी पुरानी टीम को रीजनरेट किया और वापस हम लोगों ने काम फील्ड में शुरू किया, जिसको जो जरूरत है जिला प्रशासन तक पहुंचे, उनके कंट्रोल रूम में सहयोग करना, दवाई में सहयोग करना, सब जहां जहां लग रहा था कि लोगों की कमी है और प्रशासन को लोगों के हाथ की जरूरत है, वहां वहां हम लोगों ने लोगों को अपील किया कि आइए और सहायता कीजिए, और इस तरह से चल रहे थे। तो ये
हमारे मित्रों ने ये जाना भी होगा कि बहुत सारे फील्ड में मंजीत जी सक्रिय हैं। अब क्योंकि मंजीत जी आप जानती हैं, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं वो उनके लिए है जो कोरोना से जूझकर आ चुके हैं और अब जैसा कि आप इस फील्ड में तो लगातार लगी हुई हैं, तो हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि जब कोरोना आप पॉजिटिव हुई तो आपने क्या किया, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज है, आप बहुत एक्टिव है, बहुत इसके विषय में जानकारी रखी है, तो आपने वो प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप हॉस्पिटल जाने लगी, अपने आप को किन परिस्थितियों के लिए, किन बातों के लिए तैयार किया, और साथ में मैं ये भी जोड़ दूंगी कि आम आदमी, जो सामान्य लोग हैं, वो हॉस्पिटल जाने से पहले किस चीज के लिए तैयार होकर जाएं, किस बात के लिए, किन स्थितियों के लिए।
दो चीजें हैं इसी कोरोना में। अगर मैं इस कोरोना के डेटा को कहूँ तो 85% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। 15% में से जो हॉस्पिटल जाते हैं उसमें से 12% लोग हैं जो हॉस्पिटल से सही सलामत लौटते हैं। 3% है जिनको अभी हम बचा नहीं पा रहे। दुर्भाग्य से मैं अपने पिता को नहीं बचा पाई उस 3% में, और इसी कोरोना में मैंने 7 मई को अपने पिता को खोया और मैं वापस सही सलामत आई। तो इसका कारण है कि मैं सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि होम आइसोलेशन मतलब जैसे ही लक्षण दिखाई देता है आप जांच का इंतजार न करें और आप सब लोग दवाइयां शुरू करें। हमने प्रशासन को लगातार ये जानकारी दी कि लक्षण और टेस्ट के चक्कर में डिले हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप लोग इस पे काम करें। तो प्रोटोकॉल एक जारी हुआ और उसमें कुछ दवाइयां जारी की गई और इन दवाइयों को आप लेना शुरू कर सकते हैं और ऑक्सीजन और थर्मामीटर से अपना नापना शुरू कर सकते हैं पैरामीटर, और अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं।
मैं दवाइयां ले सकते हैं
डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं। दो प्रकार के डॉक्टर की सलाह आपके पास उपलब्ध है। एक तो है कि कई बार हम पारिवारिक तरीके से किसी न किसी डॉक्टर से जुड़े रहते हैं, आप उनसे पूछें, हो सकता है वो बोले नहीं आप सिर्फ विटामिन सी और पैरासीटामॉल लीजिए, बाकी मत लीजिए, आपके लक्षण उतने नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा है कि होम आइसोलेशन को लेकर हर जिले में एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें डॉक्टर्स बैठते हैं, बहुत अच्छा होगा कि आप उनकी जरूर सलाह लें। तो ये दो चीजें हैं। हम 85% लोग घबराहट में हॉस्पिटल दौड़ते हैं, मेरा सबसे निवेदन है बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं है, मनोबल बनाए रखें। हर कोई मृत्यु की ओर नहीं जा रहा, सिर्फ 3% लोग की मृत्यु हो रही है, मतलब आप अपने आप को शुरू से 3% में मत गिनिए। अगर आपकी उम्र अधिक नहीं है, अगर आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार नहीं है। मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के पीछे भी दो कारण थे, तो मैं अगले में आती हूँ। होम आइसोलेशन में अगर आप सॉल्व हो जाता है तो होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका भी लोग लाभ नहीं ले रहे और हम हॉस्पिटल दौड़े। शुरुआती तौर पे मृत्यु की संख्या अधिक का कारण था कि जो लोग होम आइसोलेशन में रह सकते थे वो भी मृत्यु के भय से हॉस्पिटल दौड़ने लगे। तो वास्तव में जिन्हें बेड चाहिए था, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए था, उन्हें वो बेड नहीं मिल पाया, जिसके कारण मृत्यु की संख्या बढ़ी। धीरे धीरे जब ये चीजें लोगों को समझ में आई तो होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दी गई। और एक और बात है, हमको शायद बहुत सारी दवाइयां अभी नहीं भी खानी है, और हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो प्रिकॉशनरी बहुत सारी दवाइयां डलती हैं जो आज नहीं तो कल हमारे शरीर के लिए हमारी प्रतिरोध क्षमता को कमजोर कर सकती है। हमें ये विश्वास करना होगा कि हमारी प्रतिरोध क्षमता बेहतर है। तो ये एक है। अब रही दूसरा है कि हॉस्पिटल जाने वाले कौन लोग हैं। तो गंभीर बीमारी, मेरे साथ विगत कई सालों से, 15 सालों से कई प्रकार की बीमारियों से जूझी हूँ, और मेरे पिता भी चूंकि कोविड पॉजिटिव थे उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनके साथ जाना भी मेरे लिए जरूरी था, मेरे स्वयं के लिए भी। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हॉस्पिटल में कई प्रकार की दवाइयां आपके साथ शुरू हो सकती हैं, हो सकता है कि आप उसके लिए तैयार ना हो। डॉक्टर से जरूर चर्चा करें कि ये जरूरी है, रेमडेसिविर लगना जरूरी है, तो हमारा अपना इन्फेक्शन का लेवल क्या है। हर मरीज के साथ अलग अलग तरीके का जरूरत होती है। एक तो है उपचार, आप जरूर अपने पारिवारिक किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ पारिवारिक डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि क्या उसके शरीर के लिए ये काम करेगी या नहीं करेगी, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चूक हो रही है, जिसमें मैंने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया था, खाने की व्यवस्था। हॉस्पिटल में जो खाने की व्यवस्था है, हो सकता है मरीज उस खाने की व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से ना अपना पाए। इसके लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए हॉस्पिटल से कि घर से खाना आ जाए या किसी और तरीके से, लेकिन खाना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोविड एक ऐसी भी वायरल है जो 100% अधिक कमजोर कर रही है शरीर को। आज भी हमें लगता है कि हम बहुत लंबे समय तक चल फिर नहीं पाएंगे, ऐसा आज तक किसी बीमारी में हमने महसूस नहीं किया। तो खाना हमसे चूक हो रहा है, डाइटिशियन की सलाह हमसे चूक हो रही है, उसको लेकर भी हमें समझना होगा और बहुत गंभीर होना पड़ेगा।
मंजीत जी, एक बात जरूर है, जैसे आप, क्योंकि आप उस विषय में जागरूक हैं, इसलिए आप डॉक्टर से वो पूछ सकती हैं कि भाई ये जो दवाई मुझे दे रहे हो क्या मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। जो बहुत सामान्य लोग होते हैं वो हॉस्पिटल सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि अपने आप को डॉक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं, डॉक्टर ने जो कहा 100% है, क्योंकि वो आते ही हॉस्पिटल इसलिए हैं क्योंकि वो घर पे क्योर नहीं कर सकते हैं। तो उनको मेंटली किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे जो बहुत सामान्य लोग हैं बहुत जानकारियां नहीं रखते हैं, उनको फिजिकली तो ठीक है, खाना भी बाहर से घर से आ सकता है, मेंटली कैसा प्रिपेयर होना चाहिए उनको।
एक तो एक जो भय लेकर वो जाते हैं, एक मनोबल टूटता है कि अगर मुझे कोविड हो गया है मतलब मेरी मृत्यु तय है। ये एक भय इतनी बुरी तरह बैठा है जो आश्चर्यचकित करता है। एक अच्छा स्वस्थ आदमी भी इतना घबराने लगता है, तो वो एक उस भय से बाहर होना है। और डॉक्टर तो नहीं बनना है कभी भी कि आप डॉक्टर की सलाह ना माने, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी। तो एक तो मानसिक रूप से एकदम तैयार रहना कि जरूरी नहीं कोविड हुआ तो मेरी मृत्यु होगी, तो ये एक है। दूसरा है कि आप अपना दिन भर का रूटीन, बहुत हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उस रूटीन को बहुत ध्यान दें आप। अभी मैं जब हॉस्पिटल में थी, मरीज पूरे समय मॉनिटर देख के डरता रहता है कि ऑक्सीजन मेरा नीचे हो गया, ऑक्सीजन मेरा ऊपर हो गया। ऑक्सीजन आप अपनी क्षमता को जानते हैं, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, आपको लगता है कि मेरा शरीर ठीक चल रहा है, मैं अपने आप से उठ बैठ सकता हूं, तो उस स्थिति में आपको तैयार होना होगा कि आप ऑक्सीजन से बाहर कैसे आएंगे। तो ऑक्सीजन से बाहर आने के तरीके,
मैं थोड़ा सा रोकूंगी मंजीत जी, बहुत क्लियर करके ये बात करते हैं कि हम अगर हम होम आइसोलेशन में हैं तो हम वो दिनचर्या फॉलो करते हैं कि सुबह योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। हॉस्पिटल में हमको किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए?
देखिए हॉस्पिटल में भी दो चीजें हैं, दवाइयों का टाइम हमेशा बहुत फिक्स रहता है और खाने का टाइम फिक्स रहता है। ये दो चीजें तो आप ध्यान देते हैं, लेकिन तीसरी भी एक चीज होती है जिसमें कि आपको एक्सरसाइज छोटा सा बताते हैं, जैसे आजकल प्रोनिंग आपने सुना होगा कि आपको अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है तो आप उल्टे साइड हो जाएं, तकिए को छाती के नीचे लगाएं और आप वैसा बैठे। अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे वैसा करते हैं तो आपका फेफड़े मजबूत होते हैं। आप गहरी गहरी सांसें ले लेके जब आपको टाइम मिले, तो ये दो तीन चीजें हैं, ये है। और मनोबल है कि सकारात्मक ही सोचें, आप लगातार डरे नहीं। तो हॉस्पिटल में रहकर ये बहुत आसानी से किया सकता है, इवन कुछ पढ़ाई करते रहें, कुछ अच्छी चर्चाओं में दूसरे मरीजों, जैसे मैं चल फिर पाती थी, दूसरे मरीज जो ऑक्सीजन में थे तो मैं उनको जाके कि आप डरिए नहीं, आप हो जाएगा। तो मे बी ये भी एक समय है कि मैंने हर मरीज से संबंध बना लिए थे कि अच्छा होगा, बेहतर आप होंगे, लाइफ आगे जाएगी। तो सकारात्मक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने सांस लेने की एक्सरसाइज को करते रहना बहुत जरूरी है वहाँ पे।
ये स्वास्थ्यगत जिम्मेदारियां हुई। एक जरूर चीज हम आपसे जानना चाहेंगे मंजीत जी, कई बार होता है ये सामान्य तौर पे कि व्यक्ति रिएक्ट करता है अगर उसको लगता है कि उसके परिजन के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है या मामला गड़बड़ है, तो सबसे पहले वो अपना गुस्सा डॉक्टरों पर उतारता है ये जाने सोचे बगैर कि उसका नतीजा क्या होगा। तो क्या कोई एक प्रोटोकॉल मरीज को, मरीज के परिजन को फॉलो करना चाहिए डॉक्टरों के साथ? वो नैतिकता कैसी होनी चाहिए, हमको कैसा बिहेव रखना चाहिए उनके साथ?
देखिए दोनों तरफ की बातें हैं, मैं एकदम नहीं कहूंगी। जो परिजन की स्थिति है इतनी दर्दनाक है, अगर मैं अपने पिता के साथ जा पाई, जो मरीज वहाँ किसी परिजन के साथ नहीं थे, जब सबसे अधिक केयर और संभल की जरूरत है तब उनका परिजन वहाँ नहीं है। बाहर खड़ा परिजन को पता नहीं है कि उसके अंदर भीतर व्यक्ति बाहर लौटेगा कि नहीं, तो वो मना स्थिति बहुत अलग है। मैंने लगातार जिस निजी अस्पताल में थी मैंने उनको फीडबैक दिया था कि कोविड की परिस्थिति में परिजनों की स्थिति को लेकर काउंसलर्स की और समाज सेवियों की बहुत जरूरत है। आपको बाहर खड़े उस परिजन के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। रही डॉक्टर के साथ बिहेवियर, आप उस परिजन की मन स्थिति की कल्पना कीजिए। मेरे भाई साहब यूके में डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है एक काउंसलर होता है, वो परिजन के पास जाकर उसको कॉफी पिलाता है और बैठ के उससे चर्चा करता है। यहाँ चूंकि भीड़ बहुत है, भीड़ की तुलना में प्रति हजार के बीच भी एक डॉक्टर नहीं है, तो हम वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ काउंसलर और समाज सेवियों की हॉस्पिटल के साथ बहुत जरूरत है। अगर वो संवाद स्थापित हो जाएगा परिजनों के साथ तो परिजन आक्रोशित नहीं होंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि परिजन आक्रोशित होना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा प्रश्न है कि भीतर गया व्यक्ति वापस लौटेगा कि नहीं। फिर भी परिजनों को मैं कहूंगी धैर्य रखिए, चर्चा कीजिए, बात कीजिए, प्रोग्रेस को बताइए। और मैं अस्पतालों को लगातार बोल रही हूँ कि आपके यहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी आप समझाइए कि अंदर भीतर गए व्यक्ति के उम्र के अनुसार व्यवहार करें, क्योंकि वो एक मरीज को एक मैकेनिकल उपकरण की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो उनको वो जो कमी महसूस हो रही है कि मुझे दादी दादा बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे पुकारने वाले लोग नहीं है, वो उनका मनोबल तोड़ रही है। तो थोड़ा एक समय आया है जब स्वास्थ्य विभाग को अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, समाज सेवी भी पूरे हैं, तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, काउंसलर्स की अनिवार्यता होनी चाहिए और उनके माध्यम से परिजनों और मरीज के बीच एक संबल स्थापित करने का माहौल खड़ा करना पड़ेगा। तो आक्रोश संवाद होगा तो आक्रोश खत्म हो जाएगा।
केवल दवाइयां नहीं, थोड़ा मॉरल सपोर्ट भी जरूरी है, दोनों तरफ जरूरी है, डॉक्टर्स को भी जरूरी है और परिजनों को भी जरूरी है। जी एक और बात, आजकल ये पैनिक चल पड़ा है, मेरे परिचय के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। उस तैयारी के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं ऑक्सीमीटर खरीद लें, गैस सिलेंडर खरीद के रखे रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत सारी चीजें। तो ये जो हड़बड़ाहट है, प्रशासन अपनी तरह से तैयारी कर रहा है, डॉक्टर्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, एक आम आदमी को, मामूली जो बहुत नॉर्मल सा इंसान है, उसको किस तरह की तैयारी करके रखनी चाहिए फ्यूचर के लिए?
सबसे पहले है कि 5 या 6 चीजें उसको जरूरी है। पहला है कि अगर उसे हो गया तो 3 स्थिति है, सामान्य स्थिति, मध्यम स्थिति, गंभीर स्थिति। सामान्य स्थिति मतलब होम आइसोलेशन, तो होम आइसोलेशन के फॉर्म कैसे जमा करेंगे, नंबर क्या होगा? अगर मध्यम स्थिति है, कोविड केयर सेंटर कहाँ पे है, पहुंचने का तरीका क्या है, कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, अगर गंभीर स्थिति है तो कौन सा हॉस्पिटल की बेड की अवेलेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी, एम्बुलेंस कैसे मिलेगा, एम्बुलेंस कहाँ मिलेगा, और इस बीच सबसे जो है कि ऑक्सीजन कहाँ है। तो 2 प्रकार के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये कहाँ है। हमारे राज्य में और खासकर रायपुर में कोई चीज की कमी नहीं है। आप इतनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कंसंट्रेटर और सिलेंडर लेके बिल्कुल खड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों को, लेकिन आप पहले से ढूंढ के, ये 7 या 8 चीजें अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो सिर्फ कंट्रोल रूम का नंबर आप लेके बैठ जाएं, अपने आप आपकी समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि कंट्रोल रूम के माध्यम से आपको सारी जानकारी हो जाएगी। ये बहुत
एक ही बड़ी बात हुई कि हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर खरीद के घर पे रखना नहीं है कि फ्यूचर में मुझे काम आएगा, हमको वो सारे नंबर्स, वो पता इकट्ठा करके रखना है जो हमको उस समय मददगार साबित हो सके। जी मंजीत जी, आपकी टीम लगातार इस सिलसिले में काम कर रही है, हम अंतिम इसी से करेंगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, सामान्य लोगों के लिए?
ये एक समय है जब मानवता को आगे लाने का समय है। अगर इस देश में व्यवस्था स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, उसके बावजूद अगर हाथ थामा है तो मानवता ने। बहुत से लोग अभी भी झिझक रहे हैं मृत्यु के भय से। मैं अपने पिता को खोने के बाद भी वापस मैदान में उतरी हूँ। मेरे पिता मृत्यु शैया पे होकर उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा बाहर देखो व्यवस्था गड़बड़ तो नहीं हो रही, तुम हॉस्पिटल में हो। तो ये इस ताकत से हम सबको बाहर आना होगा और मृत्यु के भय से रुकना नहीं है, हाथ आगे बढ़ाना है, लोगों को मृत्यु से नहीं भय से बचाना है। मृत्यु तय है उसके बारे में, लेकिन भय से
जी मौत से तो लड़ाई है ही नहीं, हमारी लड़ाई डर के खिलाफ है, उस डर को भगाना है। जी बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आपने बहुत व्यस्त समय से हमको समय दिया। हमको पता है कि आपका थोड़ा सा समय भी बहुत कीमती है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जिस मुहिम पे लगी हुई हैं उससे जुटी रहें और लगातार सफलता पाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद अवसर देने।
जीत गए कोरोना से इस श्रृंखला में सुमेधा अग्रश्री लगातार कोरोना से जीत कर वापस अपनी जिंदगी में आ चुके लोगों से बातचीत कर रही हैं। इंतजार कीजिए हमारे अगले अंक।